الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. كلا حضرات نے اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم کے ذیل میں کچھ باتیں سماعت فرمائی تھی. ایک بات اسی آیت کریمہ کے ذیل میں یہ عرض کرنی ہے کہ اللہ نے صراط مستقیم کی توضیح کے لیے وضاحت کے لیے بتایا کہ یہ اللہ کے مقرب پسندیدہ محبوب بندوں کا راستہ ہے، یعنی افراد کی نشاندہی کی گئی. کتاب کا راستہ، حدیث کا راستہ یہ نہیں بتایا گیا، ان کا راستہ جن پر انعام ہوا، افراد کا راستہ. اسی لیے ہمارا اہل سنت والجماعت کا، اہل حق کا، علماء ربانی کا جو مسلک ہے وہ یہ ہے کہ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور رجال اللہ کے ذریعے سے تعلق مع اللہ قائم کرنا. رجال لوگوں کو کہتے ہیں، رجال اللہ اللہ کے پسندیدہ بندے، ان کو سمجھنا قرآن و سنت سے، اور قرآن و سنت کو سمجھنا ان افراد سے. موجودہ زمانے میں یہ افراد کو بیچ میں سے ہٹا دینے کا ایک فتنہ ظہور پذیر ہے. خود سے کتاب دیکھ لو، خود سے حدیث پڑھ لو. جبکہ قرآن و حدیث کا مفہوم جو متعین ہوگا وہ واسطہ در واسطہ سمجھے ہوئے لوگوں کے ذریعے سے ہی متعین ہوگا. نماز قائم کرو کا حکم ہے، کیسے قائم کریں گے اگر ہمارے سامنے اس کے حکم، اس حکم کے انجام دینے کی کوئی شکل، کوئی صورت محفوظ نہ ہو تو قائم کیسے کریں گے نماز کو؟ جبکہ الصلاۃ کئی معنی میں آتا ہے، الصلاۃ نماز کے معنی میں بھی آتا ہے، الصلاۃ درود کے معنی میں بھی آتا ہے، الصلاۃ دعا کے معنی میں بھی آتا ہے. صلو نماز ادا کرو، صلو علیہ حضور پر درود بھیجو، الصلاۃ علی المیت میت کے اوپر دعا پڑھو، اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، صلاۃ قائم کرو بولے. تب ایسی صورت میں یہ لفظ صلاۃ کے معنی کوئی کچھ لے لیں گا، کوئی کچھ لے لیں گا. ایک صاحب نے شعر لکھا، عربی شعر، موضوع کلام کو شعر بولتے، اس کے دو ٹکڑے رہتے برابر برابر وزن کے، جیسے بال ایک دوسرے سے بالکل برابر برابر رہتے، بالوں کو شعر بولتے. یہ دو ٹکڑے برابر برابر جو رہتے اس کو شعر بولتے. ایک صاحب نے شعر لکھا، خات علی عمر خبا یا لیت عینیہ سوا. ایک شعر لکھ، عمر نام کے ایک شخص نے میرے لیے قمیص سی، عمر نے میرے لیے रमेश से, काश के उसकी दोनों आंखें बराबर हो जाए। अब किताब में ये पढ़े तो क्या मतलब लेंगे इसका? दूसरे ने कौन कौन बोला, कई को बोला, उसका आगे क्या, उसका पीछे क्या, उसका सियाक क्या, उसका सबाब क्या, किसके सामने उसने ये शेर कहा और क्या उसने बतलाना समझाना चाहा, तो समझ में नहीं आया। किसी कहने वाले ने कहा ये एक साहब के सामने कहा। अब वो देख रहे हैं कि ये किस हालत में ये शेर कह रहा है। कपड़ा दिया सीने को, रमेश तैयार कर दो वो मेरी। अब सीने के बाद में जब उसे अपनी कमीज मिली कुर्ता, तो अब दो सूरतें हैं, या तो कमीज अच्छी सी के पसंद आई, या कमीज अच्छी नहीं सी के पसंद नहीं आई। सीने वाले की आंखों में कुछ फर्क था, एक आंख अच्छी थी एक आंख खराब थी। सीवन करने वाले की एक आंख अच्छी थी एक आंख अच्छी नहीं थी। अब अगर जो कमीज सी गई है उसे पसंद आई है, तो अब उसके माना होंगे या नहीं तो आई नहीं ही सवा, काश के उसकी दोनों आंखें बराबर हो जाएं, यानी जैसे एक आंख अच्छी है वैसी ही दूसरी भी अच्छी हो जाए। और अगर उसे कमीज पसंद नहीं आई, जीवन में गड़बड़ कर दी। खास तौर से आजकल का जवाब तो बड़ा अजीब है, गुंडी का कलर भी अगर कपड़े के कलर में नहीं मिलता तो काम खराब हो जाता। एक काजा छोटा एक काजा बड़ा बना दे, नाराज हो जाता। और अगर अगला दामन पिछला दामन बराबर न रखकर एक लंबा एक छोटा कर दे, फिर तो देखने का गुस्सा रहता। और अगर एक आस्तीन एक बारिश की और दूसरी दो बारिश की कर दे उठा के उसी के मुंह पर, तो कमीज अब उसने सी, उसे कमीज पसंद नहीं आई, तो अब वो यूं कह रहा कि पुराने शख्स ने मेरे लिए कमीज सी है, काश के उसकी दोनों आंखें बराबर हो जाएं। क्या मतलब है? जैसे एक आंख खराब है वैसी ही दूसरी भी खराब हो जाए। खाली किताब में आगे देखे ना पीछे, किसके सामने बोला, क्या पस मंजर है, शान बुरूद क्या है इस शेर का, उसे कुछ नहीं मालूम है। तो ऐसी सूरत में खाली किताब में ये शेर देख के कैसे मफहूम मुतय्यन करे? इसीलिए जरूरत पड़ती है बोलने वाला लिखने वाला बतलाने वाला वाले से बराह रास्त लोगों ने क्या समझा, उन लोगों से समझना। इसीलिए परवरदिगार आलम ने किताबें कम उतारे, किताबों को समझाने वाले अफराद ज्यादा नाजिल फरमाए। किताबें उतनी 100, 104, उनमें भी बड़ी किताबें तो चार ही उतरी, तौरात जबूर इंजील कुरान, बाकी के सहीफे थे, सुहफ इब्राहिम सुहफ मूसा वगैरह। जैसे हजरत शेख अल हदीस रहमतुल्लाह अलैह लिखा, 104 उनमें से 100 सहीफे, चार बड़ी बड़ी किताबें, मगर उसको समझाने वाले अफराद बहैसियत अंबिया परवरदिगार आलम ने जो मबूस फरमाए वो 100,000 से ज्यादा है। इसीलिए अपना जो मसलक बना के रखना, क्या किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह, रिजालुल्लाह के जरिए से ताल्लुक मअल्लाह उस्तवार करना। बीच में से रिजाल को हटा देने के चक्कर में है आज की दुनिया, उसके नतीजे में अजीब अजीब किस्म का चल रहा है। बैरून की दुनिया में तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, और अब तो बाहर ये भी पूछने लग गए, जुम्मा के दिन ऑफिसों को छुट्टी नहीं रहती, कंपनियों में छुट्टी नहीं मिलती, इतवार को मिलती है, क्यों ना जुमा इतवार को कर लिया जाए। ये पूछ रहे। नमाज पढ़ाना है कोई भी पढ़ा दे, टोपी वाला पढ़ा भी, टोपी वाला भी पढ़ा सकता है, छोटी वाली भी पढ़ा सकती है। तो चल पड़ा ऑफिस। गालिब का हुक्म लगता है, इस चीज का गलबा होता है, हुक्म उसका लगता है। अब ना शरीयत में नाजायज गोश्त, हराम गोश्त, ऐसे जानवर का जिस जानवर का गोश्त खाना हराम है, अब उसको खाने वालों ने बेचने वाले के पास जाकर खरीद कर उसका कीमा बनवाया, एक किलो का मिसाल के तौर पर कीमा उसमें से निकाल लिया मशीन में। उसके बाद दूसरे साहब जो हलाल गोश्त खाने वाले हैं वो गए, कहने लगे कि साहब जरा इसका कीमा बना दे एक किलो का, तो उसने उसी में डाल के बना दिया जिसमें हराम गोश्त का कीमा बनाया था। आगे अरे भाई ये गलत है, तो कहने लगे इसमें गालिब कौन सा है वो देखो, ज्यादा तो हलाल का है ना, थोड़ा सा हलाल होना चाहिए। आदमी जब अपनी अकल से समझने की कोशिश करता है तो इस किस्म की बेशुमार खराबियां शुरू होती। बल्कि कहते हैं कि साहब इस वक्त में जो जहन कार फरमा है लोगों का, वो तो कुछ ऐसा है कि पहले जो खिंजीर हराम करार दिया गया था उसकी वजह ये थी कि वो गंदगी खाकर नशो नुमा पाता था, और अब उसकी फार्मिंग चल रही, शुरू से अखीर तक गंदी गिजा नहीं देते उसको, दूसरी देते, इस वास्ते खिंजीर खाया जा सकता है। समझा ही नहीं मंशा शरीयत को, क्योंकि समझते तो अफराद से ताल्लुक रखने की सूरत में समझते। इसीलिए आजकल मुलसाबा, ये जानदार मुलसाबों को छोड़ के बेजान मुलसाबों के पीछे बहुत पड़ गए लोग। बेजान मुलसाबा बोले तो मालूम मिस्टर गोगुल उसमें ही आ गया, उसमें वो आ गया, उसमें उसमें पढ़ ले रहे करना शुरू कर दे रहे, इसमें पढ़ ले रहे करना शुरू कर दे रहे। बेराह रवि का शिकार होने की बुनियाद है ये, इसलिए याद रखना कि परवरदिगार आलम ने यूं फरमाया सिरात मुस्तकीम वो सिरात है जिस सिरात पर अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदे गामजन रहे हैं। हजरत अंबिया, हजरत सिद्दीकीन, हजरत शोहदा, हजरत सालिहीन, उनके जरिए से समझना, वरना किसी भी हुक्म की तकमील मुश्किल हो जाएगी। नमाज कायम करो की सूरत में ये जो सूरत हमारे नमाज की है बताई ही नहीं जा सकती। इसीलिए शरी अहकाम पर अमल का जो तवारुस है, तवातुर है, वो भी एक मुस्तकिल दलील है। आगे इरशाद है गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दाल्लीन, उन लोगों के रास्ते पर न चलाइए जिन पर गुस्सा किया गया है, और उनके रास्ते पर भी न चलाइए जो गुमराह है। मग़ज़ूब अलैहिम जिन पर गुस्सा किया गया, ज़ाल्लीन गुमराह, इनके रास्ते पर मत चलाइए। अब मुफस्सिरीन का कहना यह है कि मग़ज़ूब अलैहिम से मुराद यहूदी है और ज़ाल्लीन से मुराद नसारा है, और इन दोनों की मजीद वजाहत करते हुए फरमाया कि मग़ज़ूब अलैहिम वो हैं जो जान कर हक को नहीं अपनाते, और ज़ाल्लीन वो हैं जो जानने का एहतमाम ही नहीं करते, उसके नतीजे में गलत रास्ते पर चलते हैं। इसीलिए जान कर करना अल्लाह के गजब, जान कर उसके खिलाफ करना अल्लाह के गजब को दावत देता है, और नहीं जानकर गलती करना ये भी काबिले गिरफ्त है। नहीं समझ में आया तो गाड़ी ले लेके यहाँ पर राइट साइड से चले जाओ, बड़ी गाड़ी हेवी वो भी, और वो भी फराटे भरते हुए जाओ, पुलिस वाला पकड़ता, जुर्माना आयद करता, तो बोल देना मेरे को मालूम नहीं था, देखो छूट जाते क्या, छूटते हैं। अरे अल्लाह के बंदे, जब रोड पर आया तो मालूम किए बगैर क्यों आया? सऊदीया में चले जाओ, यहाँ की तरह आप लेफ्ट से जाने लग गए, कहाँ नहीं चलेगा, पकड़े जाएंगे वहां। इस वास्ते कि वहां के कानून अलग है, यहाँ का कानून अलग। बगैर जाने के गलती करना ये भी काबिल गिरफ्त है। इसीलिए बाज नौजवानों का ये कहना कि मस्जिदों में जाना नहीं, बयाना सुनना नहीं। कोई गाइगो सुने तो मालूमात होते, मालूमात हुए तो करना पड़ता, सुनना इसे नहीं किस्सा खत्म। एक साहब को बोले, हमारे एक दोस्त ही बोले, दरसे कुरान होता जी राशन में तू फलानी जगह, बहुत लोग वहां बैठ के सुनते, तुम कहीं क्यों नहीं आते, यहीं से रहते ना बाहर। अरे सुने तो करना पड़ता भाई, बोला कहते हो ऐसा से हमारे दोस्त भी क्या कर रहे, सुनना ही छोड़ दे रहे, जाओ इसका कोई दर्शन दर्शन बोल समझ में आएगा, कोई कुरान शरीफ का कोई हुक्म समझ में आएगा तो उसे करना जरूरी रहेगा ना। थोड़ा डरना चाहिए इस आयत करीमा से जिसमें फरमाया गया है वकाल रसूल या रब इन قوم اتخذوا هذا القران مهجورا। कल क़यामत के दिन पैगंबर फरमाएंगे कि मेरी कौम ने इस किताब को छोड़ दिया था, ना पढ़ते थे ना जानते थे ना उसके मुताबिक अमल करते थे। कुरान पाक का अगर सबकन सबकन मुज़ाकरा चल रहा हो तो मौका निकाल के उसमें शिरकत करनी चाहिए, रास कुरान पाक के अल्लाह के अहकाम को सुनने का मौका मिलेगा, सही इल्म हासिल होगा। तो यहूदियों वाला रास्ता भी नहीं अपनाना है, नसरानियों वाला रास्ता भी नहीं अपनाना है। यहूदियों वाला रास्ते में क्या था, यहूदियों वाले रास्ते में उनका ये आलम था कि अल्लाह की आयात का इनकार करते थे, पैगम्बराने इजाम के साथ इंतहाई नारवा सुलूक करते थे। ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق। अल्लाह पाक ने उससे पहले फरमाया وباءوا بغضب من الله, अल्लाह के गजब के साथ वो लौटे, यानी उनके ऊपर अल्लाह का गजब हुआ, ऐसा काहे को हुआ, ऐसा इस वास्ते हुआ कि वो अल्लाह की आयात के साथ कुफ्र करते थे और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को कत्ल करते थे। यहूदियों में यह था कि बड़ी बड़ी शख्सियात की बेहतरामी, और नसारा में क्या, नसारा में बड़ी शख्सियात को खुदाई दर्जा दे दी, ये गलत है। इकराम एहतराम का जो मफहूम है समझना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उनके मर्तबे के खिलाफ में कोई आदमी इकदाम करते नामुनासिब किस्म का, ये भी सही नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि किसी की अजमत में, किसी के एहतराम में, किसी की कदर में उसे इतना बढ़ा दे कि वो अल्लाह का दर्जा दे, खालिक का दर्जा दे दे, मालिक का दर्जा दे दे, ये नहीं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने एक सहाबी के पूछने पर के अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम देखते हैं लोगों को कि इलाकों के बड़े और मुल्कों के बड़े सरबराहों को लोग सजदा करते हैं और आप तो पूरी मखलूक में सबसे ऊंचे दर्जे वाले, इस वास्ते हमारा जी चाहता है कि हम आपको सजदा करें। तो क्या फरमाया नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यूं इरशाद फरमाया कि अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज नहीं है, और अगर अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करना जायज होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। इजाजत नहीं है किसी, बढ़ाना नहीं है किसी को इतना, इफरात और तफरीत, हद से ज्यादा नीचे गिरा देना यह भी गलत है और हद से ज्यादा ऊंचा उठा देना यह भी गलत है। इसीलिए हमारे हजरत शाह सूफी गुलाम मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि एतदाल عدل پر قائم رہنا، اعتدال پر قائم رہنا، راہ اوسط پر قائم رہنا اس زمانے کی کرامت ہے. بندے کو بندہ کہو، خدا نہیں. حضرت سیدنا محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى. بندہ بندہ ہے کتنی ہی ترقی کر لے، اور رب رب ہے کتنا ہی نزول فرمائے. راہ اوسط میانہ پناہ ہی سزاوار ہے. اس امت کو امت وسط بنایا گیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. ہر چیز میں اعتدال مطلوب ہے، ہر چیز میں، ورنہ اس زمانے میں جو جس چیز سے وابستہ ہے اس میں غلو کرنے لگ گیا. اعتدال نہیں ہے. یہ ذرا حساس مضمون ذکر آ جا رہا زبان کے اوپر، غلو نہیں کسی چیز میں، اعتدال، حتیٰ کہ صفات کے اندر بھی غلو نہیں. غصہ ہے، بالکل غصہ نہیں، یہ بھی صحیح نہیں. ہر ہر بات پر غصہ ہے، یہ بھی صحیح نہیں. درمیان میں رہنا. سخاوت ہے، جو آیا سب دے دیا، یہ بھی صحیح نہیں. جو آیا دینے کا نام نہیں، یہ بھی صحیح نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں، لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط. جو آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ سب کا سب دے کے خود ہی پریشان بیٹھو، اور جو آتا رہے جماتے رہو، نکالنے کا نہ نام نہ نشان. میں نے سنا کہ ایک صاحب گاؤں کے، ہم کو بتائے ہمارے دوستوں میں سے، بے حساب پیسے والا تھا ایک آدمی، مگر امبل پی کے زندگی گزارتا تھا، نہ بچوں کو کچھ دیتا تھا نہ بیوی کو کچھ دیتا تھا. اب کچھ لوگوں کو ملا پیسہ، ایسا بے تکا خرچ کرنا شروع کر دیے کہ نہ جائز جگہ دیکھی نہ ناجائز جگہ دیکھی، جبکہ پروردگار عالم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. لا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. اسراف مت کرو، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. تو بخل بھی، سخاوت بھی، روکنا ہے ایمان کے حصے میں سے، روکنا بھی، دینا بھی ایمان کا حصہ ہے، غصہ بھی ایمان کا حصہ ہے، محبت کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جو کسی سے محبت کرے اللہ کے لیے کرے، اور جو کسی سے بغض رکھے تو اللہ کے لیے رکھے، اور جو کسی کو دے تو اللہ کے لیے دے، اور کسی سے روکے تو اللہ کے لیے روکے. جس میں یہ صفت پیدا ہوئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس کا ایمان کامل ہو گیا. اعتدال چاہیے کسی بھی چیز میں. محبت کرنے لگے تو ہر ایک سے محبت کرنا شروع کر، یہ بھی صحیح نہیں. محبت اچھی چیز ہے بھائی، بس اتنا بچھا لیے، کس سے کرنا کس سے نہیں کرنا یاد ہی نہیں. اب اس سے کرنے لگ گئے جس سے محبت کرنا جائز نہیں. نوجوان ذرا زیادہ ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی چیز چاہنے کی ہے کون سی نہیں، کسے چاہنا چاہیے کسی نہیں چاہنا چاہیے. ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ دیکھو، اللہ نے آنکھیں اگرچہ دو دی ہیں، کان اگرچہ دو دیے ہیں، ہاتھ پاؤں اگرچہ دو دو دیے ہیں، لیکن دل اللہ نے ایک دیا ہے. کائے کو؟ فرمایا، ایک کی محبت کے لیے. جس نے دل دیا ہے اس کی محبت کے لیے. اب اس کے علاوہ پتہ نہیں کس کو دے دیتے چلے جا رہے. بعض بعض تو ایسے ہیں بشارے کہ آ کے بول بھی دیتے بے تکلف، مولوی صاحب ایسا بیٹھ گئی آ کے نماز میں بھی نہیں جا رہی. और ये मुसीबत कहाँ है को आई? इस बात से आई कि निगाह की हिफाजत नहीं की, कानों की हिफाजत नहीं की, जबान की हिफाजत नहीं की, सोच फिक्र की हिफाजत नहीं की, उसके नतीजे में इस मुसीबत में गिरफ्तार हो गई। पाकीजगी तो निगाहों के नीचा रखने पर मौकूफ है। अल्लाह पाक फरमाते हैं यग़ुज़ू मिन अब्सारिहिम वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़्का लहुम। ईमान वालों से कहो कि निगाह नीचे रखें, शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये उनके लिए पाकीजगी का सबब है। असल सबका ये ले लेके जाने का है, छोड़ के जाएंगे या किसी साहब से जब एक जगह से पढ़ के निकले तो क्या पढ़ के निकले जी, तो क्या पढ़े तो जो भी पढ़ा था वहीं छोड़ के आ गया। बोले अब हमारे खानखा के साथियों से यहाँ से जाने के बाद में कोई पूछे, गए थे खानखा इतनी दूर कहके वास्ते वहां गए थे, क्या लेके आए, क्या सुन के आए, जो सुना था सब खानखा में ही छोड़ के आए, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना, लेके जाएंगे सब। निगाह की हिफाजत इस जमाने में बहुत बड़ी चीज। बाद लोग कहते हैं साहब पैसा बचना, जिधर देखो औरतें बेपर्दा घूमती रहती हैं, दाएं देखो बाएं देखो आगे देखो पीछे देखो, और अब तो जालिमों ने ना ऊपर की सिमत छोड़ी ना नीचे की, शैतान दो सिमत छोड़ दिया था, शैतान दो सिमत छोड़ा था। शैतान ने कहा था लाख उदन लहुम सिरात कल मुस्तकीम सुम्मा लातियन्नहुम मिन बैन अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम। जब अल्लाह ने उसे धुतकार दिया तो कहा कि तेरे बंदों को बहकाऊंगा और उनके रास्ते में बैठ जाऊंगा, और उनको राह रास्त से हटाने के लिए दाईं तरफ से बाईं तरफ से सामने से पीछे से अपने आप को बिठाए रखूंगा। तो उसने दो सिमतें छोड़ दी थी। हमारे अकाबिर ने इस आयत के ज़ेल में फरमाया दो सिमतें उसने छोड़ी हैं, एक ऊपर की एक नीचे की। अब जाहिर है कि ऊपर तो देख के नहीं जा सकते, कहीं जाना है तो ऊपर तो देख के नहीं जा सकते हैं। तो अब आफियत कैसा जाने में है? नीचे देख के जाने में। कुर्बान हो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उन्होंने पूरी जिंदगी चलकर बताया कि निगाह नीचे यूं रख कर जाया जाता है, निगाह नीचे रखे जाओ। मगर ये इंसान नुमा शैतानों ने क्या किया? शैतान दो किस्म के हैं, मिनल जिन्नती वन नास, आग से बने हुए भी है कुछ मिट्टी से बने हुए भी। इन्होंने ये किया कि साहब छत में भी तस्वीरें लगा दी, फर्श में भी तस्वीरें लगा दी। अगर से बहुत सारे घरों में नहीं होगा मगर कई एक जगह पर ऐसा भी शुरू हो गया। तो बचना कैसा है ऐसी सूरत में कि एक साहब एक बुजुर्ग से पूछेगा, बचना मुश्किल है, ऐसा बच सकते हैं? बचना चाहता हूं मैं मगर बचना मुझे मुश्किल हो रहा है, ऐसी सूरत में क्या करूं? तो फरमाया कि अच्छा तुम्हारे सवाल के जवाब मैं जरा बाद में देता हूं। एक प्याला है, इसमें दूध भरा हुआ है, ये मेरे दोस्त के घर तक पहुंचा के आने का है, तुम पहले ये जरा पहुंचा के आ जाओ, उसके बाद मैं समझाता हूँ तुम्हारे। मगर एक कैद है, देखो ये दूध गिरना नहीं बीच में, बोले प्याला भरा हुआ है ये दूध नीचे गिरना नहीं। उसके बाद में वो नजर डाल के एक बॉडी बिल्डर को खड़ा करेगा, बोला इसके साथ साथ जाओ। तो जहां दूध गिराया वहीं इसकी पिटाई कर दो, इधर दूध गिरा तो उधर उसको मारना शुरू कर दो। वो पहलवान को साथ में कर दिया गया। अब वो बेचारा डरते सहमते दो हाथों से प्याला थाम के आहिस्ता आहिस्ता सांस लेके फूंक फूंक कर कदम उठाता हुआ लरजता कांपता आहिस्ता आहिस्ता जा रहा, कहीं गिर जाएगा दूर तो मुक्के गिरना शुरू हो जाएंगे। वो घर से निकला, रास्ता तमाम वही फिकर दामनगीर, प्याले जो देख रहा बस कहीं ऐसा ना हो कि हेल विल के कहीं दूर दूर गिर जाए। सामने का रास्ता तय किया, सड़क आई तो सड़क पार किया, गली आई तो गली पार करा, फिर उसके बाद भी और आगे गया, वो घर तक पहुंचा, गेट में पहुंच के वो प्याला पहुंचा दिया। और पहुंचाते ही इत्मीनान की सांस लेके शेर हो गया और वहां से दंदनाता हुआ बुजुर्ग के पास आया। कहने लगा कि हजरत हुक्म की तामील कर दिया और प्याला सही सलामत पहुंचा के आ गया। तो बुजुर्ग ने पूछा रास्ते में कौन कौन दिखाई दिए। उसने कहा कि साहब कौन दिखाई दिए, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दिए, इस वास्ते कि मेरी नजर पूरी प्याले के ऊपर थी और अगर प्याले में से दूध झलका तो फिर ऐसी सूरत में मुझे खतरा और अंदेशा और खौफ लायक था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी पिटाई हो जाए, बस यही चक्कर में गया भी आया। फरमाया कि देखो तुम्हारे सवाल का जवाब हो गया, कैसा बचना तुमने पूछा था, उस सवाल का जवाब है ये। बताओ कि दूध का गिरना छोटी चीज है कि अल्लाह का हुक्म टूट जाना, और किसी बंदे की जानिब से सजा का मिलना बड़ी चीज है कि अल्लाह की तरफ से सजा का मिलना। जैसे तुम्हारी नजर दूध के ऊपर थी वैसे ही नजर तुम्हारी अल्लाह के हुक्म के ऊपर होनी चाहिए, और जैसे तुमको अंदेशा था उस हुक्म की कोताही की सूरत में सजा का, ऐसे ही तुमको खौफ होना चाहिए अल्लाह की तरफ से पकड़ का। ऐसी सूरत में आसान है, तो मोहब्बत में एतदाल चाहिए, किससे चाहे किसको करना, किससे किससे नहीं करना। इसके ज़ेल में सुनाया मैं कि गैर जरूरी तौर पर ऐसी चीजों की मोहब्बतें दिलों में जमा रहे हैं जिनकी शरीयत मुतहरा में कोई इजाजत नहीं है, और कोई कोई तो आके दुआ की ऐसी गुजारिश करता है कि मुझे उसकी गुजारिश पर हैरत होती। कहता कि साहब एक को मैं चाहता हूँ, मेरी अम्मा नहीं चाहती, मेरे बाबा नहीं चाहते, जिसको मैं चाहता हूँ उसकी अम्मा भी नहीं चाह रही, उसका बाबा भी नहीं चाह रहा, मगर आप ऐसी दुआ कर दो कि हमारा उनका हो जाना। अजीब अजीब किस्म के लोग हैं, नरम आदमी मिला अभी तो परेशानी है। भाई ये सब के सब मुसीबत काहे को है, उस वास्ते है कि अल्लाह के हुक्म की हमने रियायत नहीं की, उसके नतीजे मोहब्बत में बेएतदाली पैदा होगी, बोझ में भी बेएतदाली, किससे बोझ रखना किससे नहीं रखना इसमें एतदाल नहीं है, देने में बेएतदाली है, रोकने में बेएतदाली है। कोई देने पर आया तो जरूरतमंद को भी दे रहा है, पीवेट को भी दे दे रहा है, मालूम है उसको कि लेते ही सबसे पहले कहा जाता कंपाउंड पाकिटा, लेते ही आ जाता कर, खाना नहीं मिला उसे परवाह नहीं, दे दे रहे उठा के। नहीं देने पर आए तो देख रहे हैं एक शख्स को कि बीमार है, तड़प रहा है, इलाज के लिए इंजेक्शन के लिए उसके पास पैसा मौजूद नहीं है, अल्लाह ने आपको सलाहियत दे रखी है लेकिन खर्च करने का नाम नहीं लेते। एतदाल किसी भी चीज में बाकी नहीं रह रहा है, या इफराद है या तफरीद। ये यहूदी तफरीद का शिकार थे और नसारा इफराद का। पैगंबर के साथ में यहूदियों ने यह किया कि उनको कत्ल करने तक को अपने लिए रवा समझा, اور یہ کسی شخصیت کی عظمت کو تسلیم کرنے پر آئے تو ان کو خدا بنا دے. یہ افراد تفرید نہیں, ہر چیز میں اعتدال, ہر چیز میں اعتدال. دین کے شعبہ جات میں بھی اعتدال رہنا. کوئی نماز پڑھنے پہ آ گیا تھا, صبح سے لے کے شام تک نماز ہی صحیح ہے, دوسرے فرائض کو ادا کریں گے, اور کوئی دوسرا فریضہ ادا کرنے کے بعد سے چلے گیا تو نماز کے بعد سے بولے تو کیا بولتا, یہ بھی تو فرض ہے نا. سب بے اعتدالی ہے یہاں سے لے کے وہاں, اور کوئی کوئی تو اس بے اعتدالی کا شکار ہونے کی وجہ سے اللہ کے دوسرے احکام کی بے وقعتی کر لینے کو بھی معمول برا نہیں سمجھ لینا. بہرحال دوستو, یہ سورۃ الفاتحہ کے ذیل میں کچھ باتیں آپ کی خدمت پر رکھی گئی ہیں. اپنا جو مقررہ وقت ہے سبق کا پورا ہو گیا. اللہ جل شانہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. رمضان کے زمانے میں تاخرات میں بڑا حصہ آپ حضرات نے بیداری میں, عبادتوں میں, تلاوت میں, ذکر میں گزارا. ایسی صورت میں فجر کے وقت میں آدمی کی پوزیشن کیسی رہی تھی کہ جب وہ لیٹنے کے واسطے جائے تو اس کا سر تکیے کو پہلے لگا یا نیند پہلے آئی اسے پتا نہیں چلتا, اس کے باوجود آپ پھر ایک گھنٹہ بیٹھ کے سنیں. اللہ جل شانہ بہت جزائے خیر آپ کو عطا فرمائے, اور زیادہ ذوق شوق دینیات کا نصیب فرمائے. جو کچھ باتیں سنائی جا رہی ہیں ذرا یاد رکھ کے اسے وقت پہ برتنے کا اہتمام کیجئے, اور یہاں سے محفوظ لے کے جانا انشاءاللہ اللہ اس سے نفع ہوگا, اس سے فائدہ ہوگا. اللهم ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله, يا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد, يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره, توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واحشرنا مع الابرار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا, ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين. الحمد لله رب العالمين. Thank you.